अध्याय दो। बिना दीवारों का घर, आओ घर घर खेलें। जब दो लोग प्यार करते हैं, सबसे पहले घर के बारे में सोचते हैं, स्थायित्व, सुरक्षा, अपनत्व और ऊर्जा देने वाले होम, स्वीट होम के बारे में। क्योंकि कितना भी खुला समाज हो, खुले आकाश के नीचे प्रेम करने और करते चले जाने की अपनी सीमाएं हैं। जंगल, पहाड़, चांद और नदी का किनारा अलभ्य मोटिफों के रूप में हमें चाहे जितना आकर्षित कर ले, प्रेम चाहे जितना निराकार और अनंत हो, उसकी परिणति के पार्थिव घटक देह और घर खासे संकुचित और ससीम हैं। अनंत और ससीम का यही द्वंद्व उन सारे पारिवारिक तनावों की जड़ है, जिनसे ऊब कर लोग पारिवारिकता से ऊपर उठ जाने की बात कह रहे हैं। वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा हमारे लिए नई नहीं है। रक्त संबंधों से कहीं अधिक मधुर और सार्थक आत्मा के रिश्ते होते हैं। रिश्तेदार तो हम चुन नहीं सकते, पर मित्रों का चुनाव हमारा अपना होता है। स्नेह, सौहार्द, धीरज, सहानुभूति, भावात्मक संबल, आर्थिक, सामाजिक सुरक्षा और पारिवारिक मूल्यों का पूरा पैकेज मित्र ही हमें प्रदान करते हैं, और कहीं अधिक निस्वार्थ ढंग से। फिर बंधु परिवार की धारणा क्यों न बलवती हो भला। विज्ञान ने कृत्रिम गर्भधारण की अनेक प्रविधियां विकसित की हैं। अमेरिका में ली नामक एक पुरुष भी मां बना है। उत्तराधिकार के कई कानून बदले हैं या बदलने की प्रक्रिया में हैं। इन सब परिवर्तनों के दम से परिवार संबंधी धारणाओं में परिवर्तन आ जाना खास लाजमी है। पूंजी पर एकाधिकार, स्त्री पर एकाधिकार का पोषक बना और परिवार की धारणा का पोषक भी। अर्जित धन के प्रति पुरुषों का इतना मोह होता है कि मृत्यु के बाद भी वह किसी और के हाथ न जाए, उनके अपनी औरत, अपनी संतान के हाथ ही रहे। इसकी व्यवस्था उन्होंने स्त्रियों की स्वतंत्रता पर पहरे बिठाकर और परिवार का दुर्ग और मजबूत बनाकर की। बाद में औरतें जब खुद अपना धन अर्जित करने लगीं और विज्ञान में सुरक्षित संभोग कर स्वतंत्र गर्भधारण के कई साधन विकसित किए, तब इन प्रतिबंधों का अर्थ खास कुछ रहा ही नहीं। इस संदर्भ में एक रोचक पुस्तक सामने आई है, मामास बेबी पापास मेबी। पर पश्चिम की बात फिलहाल हम जाने ही दें और सिर्फ इतना ही देखें कि अपने यहाँ के संक्रमणशील समाज में परिवारवाद के नाम पर क्या घट रहा है, तो मन भी फर जाएगा। औरतों की दैहिक, आर्थिक, मानसिक प्रतंत्रता के जड़ें तो खैर परिवारवाद द्वारा प्रसृत हुई ही। भाई भतीजावाद, पुत्र पुत्रीवाद और कुछ अर्थों में जातिवाद, प्रांतवाद और धर्मवाद आदि संकीर्णताओं के मूल में यह परिवारवाद ही है, जिसे ध्वस्त करने के लिए मनीषियों ने वसुधैव कुटुंबकम की बात कभी की होगी। हमारी त्रासदी यह है कि हम आज तक अतिरेकों में जी रहे हैं, लेकिन हमारा जो आने वाला कल है वह विशेषकर स्त्रियों के संदर्भ में सारे प्रचलित मिथक ऐसे तोड़ेगा जैसे कभी निराला की नायिका ने पत्थर तोड़े थे। यह भी कम बड़ा परिवर्तन नहीं है कि पढ़ी लिखी तेजस्वी स्त्रियां आज बहुधा अकेली रह जाती हैं, और खासे ठसक के साथ। गए वे दिन जब बड़ी उम्र की कुंवारियों, परित्यक्ताओं, विधवाओं और मां न बन पाने सकने वाली वालियों के साथ डायनपने और कटखनी कटुता का मिथ जोड़ दिया जाता था। आज तो घर के पड़ोस के अनादृत बूढ़े और बच्चे, बेसहारा स्त्रियां बतरस का सुख और थोड़ा चाय पानी भी न अकेली स्त्रियों की गृहस्थी में ही पाते हैं। पक्के गृहस्थों के घर तो हमारे दो के संकीर्ण हृदय मतलब परस्ती ही ज्यादा देखती है, क्योंकि उनका दर्शन काम से काम बाकी सब हराम वाला हो गया है। दूसरी तरफ यह हो रहा है कि बने बनाए परिवार की भी बड़ी तेजी से टूट रहे हैं, कहीं अहम के टकराव से, कहीं मन में किसी और के आबसने की बेचारगी के कारण। अभंग, साहचर्य और एकनिष्ठ समर्पण बड़े मूल्य हैं, किंतु जीवन का एकमात्र सच यह नहीं है। व्यक्तित्व की अनेक अंतरधाराएं हो सकती हैं और उन अलग अलग धाराओं का जुड़ाव अलग अलग बिंदुओं से हो सकता है। मिथकों की सारी परकिया नायिकाएं एक बड़े सत्य का संवहन करती दिखती हैं। उनका द्वंद्व आधुनिक जीवन का बड़ा द्वंद्व है, और राधा के साथ कृष्ण की पूजा भारतीय समाज की बड़ी महत्वपूर्ण स्थापना। राधा, अन्ना करेनिना और शेखव की डार्लिंग आदि को किस छल छद्म और फ्रेल्टी के घेरे में बांधा जा सकता है भला। पारिवारिकता के घेरे के बाहर पड़ते प्रेम की उन स्मोरल स्थितियों का ये प्रतिनिधित्व करती हैं जिनसे उत्तर शतक की स्त्री को बार बार जूझना पड़ता है। स्त्रियों से संबद्ध बहुत सारे मिथक तो पहले ही टूट चुके हैं, पर जो होने वाला है वह बहुत ही रोचक है। परिवार तेजी से टूट रहे हैं। आधुनिकता के पहले दौर में संयुक्त परिवार टूटे टूटने ही थे। आज न्यूक्लियर परिवार के इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन यानी पति पत्नी और बच्चे भी अक्सर तीन दिशाओं में छिटक गए से दिखते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ा विस्फोट है। बच्चे छात्रावासों या डे केयर केंद्रों में और माँ बाप अलग अलग नौकरियों पर, बहुधा अलग अलग शहरों में। भारत में भी रिमोट कंट्रोल विवाहों का प्रतिशत कुछ कम नहीं, जहाँ महीने दो महीनों में एक बार दंपतियों का मिलन होता है और फिर अपने अपने घरों में गृहस्थी एकल परिवार सोलो फैमिली में वे मग्न हो जाते हैं। भारतीय पुरुषों के लिए अकेले डेरे, भूत के डेरे की बात कुछ नई नहीं। परदेसी पिया कलकत्ता में, रंगून में, बनारस में और पटना में अपने एकाध कमरे की मर्दाना कामशालाओं गृहस्थी बसाए हुए बीच बीच में गाँव घर से जूड़ा ठेकुआ शकरपारे नमक पारे अचार और तेल तक ढोटे ढबाते और फिर वापस सिंदूर टिकुली चुनरी जम्पर दिलरुबा चोला झुमके और चूड़ियाँ पहुँचाते हुए एक अरसे से देखते रहे हैं। रेल विभाग इन्हीं के आश्रय तो चलता है, पर स्त्रियों का संयुक्त परिवार के संरक्षण के बाहर पति से वियुक्त रहते हुए नौकरी करना और पारिवारिक संबंधों की अंतर्व्यथा निभाए चलना अपेक्षाकृत नई घटना है। समन्वयवादी फेमिनिस्ट मॉडल का मिथ इसी स्थिति में आकर जुड़ता है, पर यह स्थिति कब तक चल पाएगी कहा नहीं जा सकता। नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है और तुरंत तुरंत स्वतंत्र हुआ व्यक्ति भी मैं सब संभाल लूंगा कि आदर्शवाद की चपेट में जी धुन कर काम करता है, पर कब तक। आज तो ज्यादातर घरों में स्त्रियां नव स्वातंत्र के उल्लास में तिहरे दायित्व तो निभा रही हैं। वे नौकरी करती हैं, गृहस्थी चलाती हैं और बच्चों को पढ़ा लिखा कर बड़ा भी वे ही करती हैं। ऐसा नहीं है कि पुरुष निखट्टू है और वे नौकरी के सिवा कुछ कर ही नहीं सकते, पर उन्हें चूल्हा चौका चलाना और रोता हुआ बच्चा खिलाना हे और उबाऊ दिखता है और शरीर बल के आधिक्य का दावा करने के बावजूद वे स्त्रियों की तरह खट नहीं पाते। जिन घरों में स्त्रियां नौकरी करती हैं, बिजली पानी टेलीफोन का बिल जमा करवाना, बैंक पोस्ट ऑफिस LIC के सारे काम, बच्चों का स्कूल आना जाना, उनकी फीस भरना, आए गए को देखना भालना, सौदा सुल्फ करना ज़्यादातर उन्हीं के जिम्मे रहता है और इसके समर्थन में एक सीधा तर्क यह दिया जाता है कि अधिकारों के साथ कर्तव्य क्यों नहीं बढ़े भला। हो सकता है कि यह स्थिति बहुत दिन न चले और मातृत्व के मिथ पर शहीद होना स्त्रियां भी छोड़ दें तो क्या पुरुष के ये सारे दायित्व उठा लेंगे, नौकरी गृहस्थी बाल बच्चे। बालिकावध किस तरह से बढ़ा है उस हिसाब से वह दिन दूर नहीं कि एक स्त्री के कई कई पति हों और सब मिलजुल कर एक कम्यून सा बना ले कि यह काम मेरा या तुम्हारा। यह भी हो सकता है कि किराए के गर्भ से बच्चे खरीद कर मर्द स्त्रियों के बिना ही जीने की सोचें। अमेरिका के 3-4 टेलीविजन सीरियलों में इधर स्त्रीविहीन घरों का महात्मा खूब बखाना है और वे लोकप्रिय भी बहुत हुए हैं। माई थ्री सन्स, द राइफलमैन, बोनांजा और बैचलर फादर समलैंगिकता पर जोर है ही, किराए के घर भी मिल जाएंगे फिर यूनिवर्सल सिस्टरहुड की तरह यूनिवर्सल गेहुड क्यों नपन पे। ऐसा भी हो जाना असंभव नहीं कि रक्त संबंध परिवार को बांधने वाला तत्व न रह जाए और दोस्तों की तरह कुछ रिश्तेदार ही भी साथ रहने के लिए चुन लिए जाएं, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हों, कुछ घर के कुछ बाहर के पृथकता के लिए बच्चे। वर्किंग वुमेन्स हॉस्टलों के सुखद परिवेश को देखते हुए कहा जा सकता है कि यह व्यवस्था वैसी बुरी भी न होगी। आज महानगरों में नई तरह के एक लॉज बेस्ड परिवार का विकास भी तेजी से हो रहा है, जिसमें गांव या छोटे शहरों के अलग अलग कोने से पढ़ने या नौकरी व्यवसाय आदि करने आए नवयुवक युवतियां अच्छे सामंजस्य के साथ गृहस्थी चला रहे हैं। तेजी से फैलती हुई इस दुनिया में ऐसे कम्यून सदृश परिवारों का चलन बढ़ेगा ही, जिसमें स्त्रियों की भूमिका किसी अलग श्रेणी की मुखापेक्षी नहीं होगी और बाबा मनुस्मृति की चेतावनियों के साथ अतल विस्मृति के गर्भ में जा धसेंगे। स्त्रियां वैसी ही होंगी, उतनी ही अच्छी या उतनी ही बुरी जितने पुरुष, और कुछ दिन अधिकार कर्तव्य सब साझे चलेंगे। इससे जीवन का रस तत्व कम भी हो सकता है, एक रूपता एक रसता को जन्म देती ही है, वैविध्य है तभी वैध सौंदर्य है। पर कुछ दिन ऐसा भी हो सकता है कि स्त्री पुरुष के बीच किसी यूनिसेक्स मल्टीपर्सन की धारणा बलवती हो उठे। ऐसा थोड़े ही है कि करुणा क्षमा ममता प्रेम आदि मानवीय गुण सिर्फ स्त्रियों के ट्रेडमार्क हों, पुरुषों में भी ये गुण होते हैं, उन्हें सिर्फ धरातल पर लाने की आवश्यकता है। यदि वे धरातल पर आ गए तो नई स्त्री से समायोजन में उन्हें कोई कष्ट न होगा और वे उतने ही संतृप्त रहेंगे जितने मिथकी स्त्रियों के पुरुष रहते थे। मैं बार बार कहती हूँ कि नारीवाद के आग्रह से स्त्रियों का स्नेह तत्व मर गया हो यह भी गलत है। पहले की स्त्रियां संबंध निभाती थी तो आर्थिक परतंत्रता जन्य व्यवस्था उनके साथ रहती थी। पति आदि से विरोध भी है तो चुपचाप सहना है, निभाना है, इसके सिवा उपाय भी क्या है। अब आर्थिक स्वतंत्रता है तो उपाय बहुतेरे हैं। ब्यूटी कल्चर आदि के जोर से और बच्चे कम होने के कारण भी स्त्रियों का दैहिक आकर्षण अधिक दिनों तक बरकरार रहता है और पढ़ी लिखी होने के कारण आत्मिक बौद्धिक और नैतिक परिष्कार भी उनमें आया ही है। पति उनके न भी हों तो अक्सर उनके प्रशंसक अनेक होते हैं। इसके बावजूद ज़्यादातर स्त्रियाँ परिवार संजो कर रखना चाहती हैं। क्यों? साहचर्य जन प्रेम स्नेह के आग्रह से ही तो, और इस आरोपित चिंता के भार से भी कि पति बच्चे उनके बिना गिर पड़ जाएंगे। कोई किसी के बिना गिर पड़ नहीं जाता, गिरता पड़ता भी है तो कुछ दिन के लिए, पर हाँ इसने का यह आग्रह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है कि साथ रहा जाए और एक दूसरे के गुण दोष और सुख दुख जहाँ तक संभव हो झेल लिए जाएं। वैसे साल दो साल की विवाह श्रृंखलाओं का चलन यहाँ भी हो सकता है, जिसके बारे में ब्लैक अमेरिकन सिविल राइट्स के कार्यकर्ता ने हाल ही में एक दिलचस्प वक्तव्य दिया। इन्वर्टेड कामा, किसी हॉलीवुड सिनेमा के अंत की तरह विवाह गोरी चमड़ी वाले प्रतिष्ठित समाज में जीवन की संभावनाओं का भी द एंड होता है। अपने पूरे जीवन का वादा एक बार में कर देने की हिम्मत मुझ में नहीं। इस साल हो सकता है कि मैं विवाहित रहना चाहूँ, पर अगले साल? ऐसा नहीं है कि विवाह नामक संस्था में मैं अनास्था व्यक्त कर रही हूँ, बल्कि यह दृष्टिकोण उसके प्रति मेरे विनम्र सम्मान का प्रतिफल है और सिविल राइट्स मूवमेंट की सीख की चीज़ों और पदों को अस्थाई समझो और उनसे तब तक ही जुड़ो जब तक तुम्हें लगे कि तुम इन्हें अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम दे रहे हो। इन्वर्टेड कामा पर, यह स्थिति और सब दृष्टियों से ठीक भी हो पर बच्चों के समुचित विकास की दृष्टि से घातक है, ऐसा मानना ही होगा। और यह मुख्यतः बच्चों के प्रति जिम्मेदारी का एहसास ही है कि इंटीग्रेटेड फेमिनिज्म की धारणा ऐसी लोकप्रियता पा रही है। टिली ओल्सन ने बहुत मजेदार किंतु सोच को उकसाने वाले ढंग से यह बात अपनी पहली कहानी में रखी थी। प्रसंग है कि स्त्री बहुत जल्दी में है, हजार काम उसके सिर पर सवार है और लोग हैं कि हर दिशा में उसे कुछ पूछते हुए ही प्रकट होते हैं। लंबी चुप्पी के बाद उसकी पहली पंक्ति है, इनोटेड कामा, आई स्टैंड हियर आयरनिंग एंड व्हाट यू आस्क्ड मी मूव्स टॉर्मेटेड बैक एंड फ्रंट विद आयरन। इनोटेड कामा, मैंने इसके अनुवाद की हिम्मत नहीं की, ज्यों का त्यों इसे उद्धृत कर दिया है, इस आशा के साथ कि स्त्री की गर्म स्त्री युगों से गठरियाए प्रश्नों की सलवटें शायद कुछ सीधी कर पाए। आधुनिक स्त्री का दुर्भाग्य देखिए कि उसे अपनी लड़ाई खुली सड़क पर लड़नी पड़ रही है। इप्सन की नोरा की तरह न उसका कोई गुड़िया घर है जिसका दरवाजा वह किसी के मुंह पर बंद कर सके, और नए महाराष्ट्र के भक्त कवि जनाबाई की तरह का कोई हरि है जिसके पास जिससे वह मन खोलकर कह पाए, हे माधव देखो ना कितनों तो काम धरे हैं सिर पर, इतना आटा गूंधना है अभी, इतने कपड़े कूटने हैं, आओ भी हाथ बटा दो थोड़ा, या फिर तुम हेर दो जुए ही जरा, कुछ तो करो ना कुछ ना करो। मराठी की एक पंक्ति के आधार पर पल्लवित। मातृत्व की नई चुनौतियां। भारतीय घरों में पुरुषों की आम शिकायत यह है कि नई माओं ने अपने बच्चों पर वशीकरण मंत्र साध रखा है, किसी और की वे सुनते ही नहीं। कुछ घरों में तो पिता और पितृपक्ष के लोग यह भी शिकायत करते हैं कि माताएं और मातृपक्ष के लोग बच्चों को घूस देकर अपना बना लेते हैं। घूस यानी दुलार और उपहार, साथ बैठकर सुख दुख बतियाने का धीरज, बकौल उनके या घूस उन्हें पोट कर अपने पक्ष में किए रहने की खातिर दी जाती है ताकि पितृपक्ष को नीचा दिखाया जा सके। माँ बेटे के रिश्ते के अंतरंग पक्षों पर एडिपस और सनसन लवर्स आदि के जमाने से बात चली आ रही है। इधर माँ बेटी के रिश्ते पर भी कुछ नई टिप्पणियाँ सुनने को मिलती हैं। जब किसी का विवाह विच्छेद होता है, सारी तोहमत लड़की की माँ पर आ जाती है कि वही घर फोड़ू थी। लड़के वालों के बीच एक चुटकुला चलता है कि लड़की ने देखो न सही, उसकी माँ को जरूर देख लो। जैसी माँ होगी वैसी ही तो होगी बेटी भी, कम से कम संस्कार तो वैसे ही होंगे। सास शब्द में ही आस छुपी है, किंतु यह पदवी शुरू से ही औरतों को निराश करती रही है। इतने बेमेल विवाह हमारे यहाँ एक झटके में हो जाते हैं कि दाम्पत्य जीवन तो शायद ही किसी का उत्कृष्ट होता है। कम से कम स्त्री के लिए घर के बाहर कहीं प्रेम आजमाने के काफी खतरे हैं। अब वह करे तो क्या करे? आत्मा का सारा प्रकाश अपने संतान पर लुटाती है। संतान उसके जीवन का केंद्रीय सच होती है। यही संतान बड़ी होकर अपनी एक नई दुनिया बसाती है तो एक सुनसान सा घिर आ ही आता है। यही वह समय होता है जब मध्यवाय के अन्य संकट स्त्रियों का आत्मबल तोड़ने लगते हैं। पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही ऐसी है कि स्त्री के रूप और यौवन को जरूरत से ज्यादा तुल दिया जाता है। मध्यवाय तक यह भी छीनने लगता है तो स्त्रियों को लगता है कि अब वे गई काम से। मध्य वय तक पति भी जरूरत से ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं बाहर की दुनिया में। रूप और यौवन का सूर्यास्त भी एक तरह की बेचैनी उनमें भरता है। लगता है कि कुछ तो ऐसा करना चाहिए कि घर में उनकी स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। जो औरतें पढ़ लिख कर अपनी दुनिया बड़ी कर लेती हैं, या जिनमें भक्तिभाव और देवी सिंड्रोम जग जाता है, या जो अपने किसी विशेष हुनर के चलते बृहत्तर परिवार और समाज में भी लोकप्रिय होती हैं, या जिनमें सेवा भाव बहुत ज़्यादा होता है, उनकी दिक्कत एक दूसरी तरह की दिक्कत होती है। उनकी बहुओं के मन में उनको लेकर ग्रंथि से बैठ जाती है कि वे इतनी अच्छी क्यों हैं। हीनता ग्रंथि से ग्रस्त बहुएं मेरा पति सिर्फ मेरा है सिंड्रोम का शिकार होकर न सिर्फ भाई बहनों दोस्तों से बल्कि माँ बाप से भी पतियों को लगती हैं काटने। ऐसे चकर चाल चलाती हैं कि हिम्मत नहीं होती माताओं के कि वे बेटे के साथ 10 मिनट भी अकेले बैठकर कुछ बतिया लें। यह क्रूर और भयानक स्वत्वबोध अच्छे खासे बेटों को भी डरपोक भयाक्रांत भूताहा बना देती है। चूंकि बाहर की दुनिया भी उनको देखने संभालनी होती है और रात में आकर अच्छे माहौल में खाना भी खाना होता है, जो कि बच्चों के आगे भी कलह क्लांत परिवार का उदाहरण वे रखना नहीं चाहते। व्यवहारिक लोग पत्नियों की भावनात्मक असुरक्षा को हवा नहीं देते, उनसे कुछ कहते नहीं और माँ से ही उम्मीद करते हैं कि वे समझदार और शालीन बनी रहें, एक शब्द चू चपड़ किए बिना कर्तव्य सारे करें और अधिकार बिल्कुल भी नहीं जताएं, बटुए का मुँह खुला रखें और अपना बोम बंद। ड्राइंग रूम में नहीं आए, फोन न करें, कहीं आए जाए नहीं, पड़ोस से भी कोई संपर्क नहीं रखें ताकि किसी को हवा भी न लगे कि वधुशासित स्पेस में उनकी क्या क्या गत बनती है। इसके विपरीत जहाँ सांसें दबंग हुई वे बुढ़ापा आते आते पितृ सत्तात्मक व्यवस्था के सब दाव पेच जान जाती है। उन्हें लगने लगता है कि शक्तिमान होने का घर में वर्चस्व बनाए रखने का एक सिद्ध तरीका है कि पितृसत्ता की एजेंसी ले लो, आत्मसात कर लो वे सब दाव पेच जो तुम्हारे साथ लगातार खेले गए। पुरुष भी प्रसन्न रहेंगे और सब नई बहुरियाँ इशारों पर नाचेंगी। बैठे बिठाए कैसे अपनी अर्जित संपत्ति और बेटा दोनों वार दे इन पर। प्रेमचंद की एक मजेदार कहानी है गृह नीति, जिसमें नायक भी एक खेल खेलता है। माँ के पास पहुंचकर समझ लेता है कि घर में दिन भर हुआ क्या क्या, फिर पत्नी के पास पहुंचता है। इस पर दांत पिजाती हुई पत्नी सास की शिकायत शुरू करती है। वह भरी आंखों से इसकी ओर देखता है और बात आधी ही दूरी पर इस तरह मोड़ता है कि पत्नी का किया हुआ कोई एक ठीक ठाक काम प्रकाश में आ जाए, बाकी नरगल चला जाए पृष्ठभूमि में। वह दंग होकर पूछती है कि हाँ यह किया तो था, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? वह कहता है कि माँ तो तुम्हारी तारीफ कर रही थी, हालांकि यह सफ़ेद झूठ है। माँ ने तो शिकायती लहजे में ही दिन भर के ब्यौरे दिए थे, लेकिन अच्छे संपादक की तरह वह कुछ तथ्यों की सॉफ्टनिंग करके एक अलग बॉक्स में डाल देता है। यही खेल वह माँ के साथ भी खेलता है और दोनों धीरे धीरे दोनों का मनोमालिन्य धोने में सफल भी हो जाता है। यह शुभ्र मिथ्या के सहारे जिसे प्रेमचंद गृह नीति कहते हैं राजनीति नहीं है, यह कूटनीति है। एक सुखद डिप्लोमेसी, दो पूर्वाग्रहग्रस्त पड़ोसी राज्यों के बीच एक विवादित क्षेत्र को लेकर झगड़ा हो तो राजदूत की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, और ऐसे कई पवित्र झूठ उसे आजमाने पड़ते हैं जिनका उद्देश्य अच्छा हो। इन दोनों इसी तरह की नीतियाँ पढ़ी लिखी उन औरतों की भी आजमानी पड़ती हैं जिनके माता पिता भाई भाभी से उनके पति या परिवार के अन्य महत्वपूर्ण सदस्य किसी कारण चिढ़ गए हों। बातों की कील कांटे निकाल फेंकने की कला में ये स्त्रियां माहिर हो जाती हैं, और बाद में जब बच्चे बड़े होने लगते हैं और पिता हर बात में उनके पीछे डंडा लेकर पड़ जाता है, एक नए तरह का सद्भाव मिशन उन्हें चलाना पड़ता है, जिसके तहत यथातथ्य रिपोर्टिंग कभी नहीं होती। दोनों पक्षों की मार्क टिप्पणियाँ हैवी एडिटिंग के बाद ही एक दूसरे को सुनाई जाती हैं ताकि खून खराबा न हो जाए, घर घर बना रहे। स्थापनाएँ तो अपने यहाँ इतनी सुंदर सुंदर हैं कि क्या बोल। पंचवर्षाणी लालयित, दशवर्षाणीर्द ताड़ेत, प्राप्तेषु षोडश वर्षे मित्रवत समाचरित। पहले दो प्रस्ताव कहीं कहीं माने भी जाते हैं, लेकिन 16 वर्ष के पड़ोस में जैसे ही बच्चे पहुंचते हैं पिता उनसे मित्रवत आचरण क्या करेगा। उन्हें अपना सबसे बड़ा दुश्मन ही समझने लगता है और तुर्रा यह कि जो कर रहा है उनके ही हित में कर रहा है। माताएं तो सिर्फ बर्बाद करती हैं, आबाद करती हैं सिर्फ पिता की शक्तियाँ, उनसे ही परिवार में अनुशासन कायम रहता है। इस तरह के मुगालते हर तानाशाह के होते हैं। हिटलर को भी ये थे, पर समय ने सिद्ध कर दिया कि सबसे टिकाऊ व्यवस्था प्रजातंत्र ही है, और परिवार में प्रजातंत्र का पालन अगर नहीं होता है तो देश को अच्छे नागरिक मिलेंगे कैसे। पुलिसिंग से सिर्फ चूहा बिल्ली वाला रिश्ता कायम होगा। आपकी स्कूटर का हार्न सुनते ही बच्चे पढ़ने के मेज में मुद्रा बनाकर जा बैठेंगे और आपके जाते ही हल्ला शुरू हो जाएगा। व्हेन द कैट इज अवे द माइस विल प्ले का सीधा तर्क। आश्वस्त किए बिना आदेश लादे जा सकते हैं लेकिन मनवाए नहीं जा सकते। और बच्चे आश्वस्त होते हैं उस प्रजातांत्रिक संवाद में जो माएँ तो साथ लेती हैं, पितृ सत्तात्मक की कृतियों के कारण पिता नहीं साथ पाते और बिना मौसम के बरसात की तरह गरजते तरसते रहते हैं। यदि आत्मीय संबंधों का कोई कंपटीशन सक्सेस रिव्यू निकले तो सफल माताएं विफल पिताओं से अपनी सफलता का राज बांटते हुए बस इतना कहेंगी कि वे प्रजातांत्रिक थी, उन्होंने सुनी भी सिर्फ सुनाई नहीं, बच्चों का पास समझने की भी कोशिश की, उन्हें गोदी में लेटाकर समझाया कि ऐसा नहीं करना चाहिए तो क्यों, धीरज के बिना कोई बात नहीं बनती, जो भी जन्म के खड़ा ही हुआ है उससे क्या बराबरी करना, वह खुद को जितना भी बड़ा शेख समझे है तो बच्चा ही, आपका ही बच्चा, बात बात पर गेट आउट शट अप करिए तो विकल्प के अभाव में घर के बाहर भले ही न जाए चुपचाप जाकर सो जाएगा एक कोने में, पर आपके जीवन से तो समझिए वह चला ही गया और दोबारा उससे आपका सहज बातचीत का रिश्ता शायद ही बन पाए, ऐसे ही बनती जीवन में गांठे। माताओं का उज्ज्वल पक्ष यह है कि वे गांठे खोलना चाहती हैं, पक्की नहीं करना चाहती, चाहती हैं कि सबकी खातिर एक उत्फुल्ल जीवन, करुणा संबलित न्याय दृष्टि, ये सच्ची स्त्री दृष्टि है। यहाँ क्षमा की भूमिका इतनी बड़ी हो जाती है कि अक्सर ही स्त्रियाँ हंसकर कह देती हैं मेरे पति वे तो मेरा सबसे छोटा बच्चा है।